ग्रंथराशि में भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 शीर्षक है कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या 13 से 19 हम पढ़ेंगे और फिर 20 के ये जो श्लोक लिखा है ये श्लोक संख्या 20 है। तो इनमें से कुछ में तात्पर्य हैं तो हम पढ़ देते हैं और फिर ये श्लोक उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 13 इस प्रकार से है। एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणाशिप्त चेतसा आकंठ मग्ना शीतोदय वेपुमानास्तम ब्रुवन। अनुवाद। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाकिया वाणी अर्थात परिहास से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक घसी रहकर कांपने लगी। अतः वे उनसे इस तरह बोली। इसमें तात्पर्य दिया गया श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील विष्णुचरण ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के बीच परिहास का निम्नलिखित उदाहरण दिया है। कृष्ण कह रहे हैं, अरे पक्षी जैसी कन्याओं, यदि तुम यहां नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टंगे वस्त्रों का मैं झूला बना लूंगा और उसमें लेट जाऊंगा क्योंकि मैं रात भर जगा हूं और अब मुझे नींद आ रही है। गोपियां कह रही हैं, अरे हमारे प्यारे ग्वाले, तुम्हारी गौवें घास की लालच में गुफा में चली गई हैं, तुम तुरंत जाकर उन्हें उचित राह पर लाकर चराओ। कृष्ण, अरे गोपियों अब तो जाओ, तुम्हें जल्दी ही यहां से व्रत जाकर अपने घर का कामकाज करना चाहिए। क्यों अपने माता पिता तथा अन्य गुरुजनों के लिए सिर दर्द बन रही हो? गोपियां कहती हैं, हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे मास तक यहां से नहीं जाएंगी क्योंकि हम कात्यायनी का यह व्रत अपने माता पिता तथा गुरुजनों के कहने पर ही कर रही हैं। कृष्ण, अरे मेरी प्यारी तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मैं यहाँ एक मास रुककर बादलों में रहने का व्रत पूरा करना चाहता हूँ। यदि तुम लोग मुझ पर दया दिखा सको तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास पूरा कर सकता हूँ। गोपियां कृष्ण के मजाकिया शब्दों से पूर्णतया मोहित थी किन्तु लज्जावश गले तक पानी के भीतर रहती रहीं। वे ठंड से थरथराती इस प्रकार बोली। श्लोक संख्या 14। मानयम्बो कृतास्त्वाम तु नंद गोप सुतम प्रियम जानिर्मो अग्रजश्राग्यम देहि वासांसि वे पितः। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण अन्यायी मत बनो, हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और व्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। तुम हमें भी अत्यंत प्रिय हो, कृपया करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः कर वाम तवोदितम देहि वासाम च धर्मज्ञ नो चेद् राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और यदि तुम हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कहेंगी, समझे? श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 16। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्वासांसि प्रतीक्षत शुचिस्मिताहं नो चेन्नाहं प्रदास्य किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कुछ कहता हूं उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी अबोध मुस्कानों से युक्त होकर यहां आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि नाराज भी हो जाए तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण अटल हैं तब उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने के सिवाय कोई चारा न था। ततो जलाशया सर्वा दारी कह शीत वे पिता पाणीभ्याम योनि माचाद्य प्रोते रूह शीत कर्षित। तत्पश्चात कष्ट प्रशीत कांति सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकली। तात्पर्य, गोपियों ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियां हैं और उनका कहना मानने को तैयार हैं, अतः वे अपनी ही बातों से हार चुकी थी। पहले उन्होंने बोला कि हम आपकी दासियां, तो कृष्ण कह रहे हैं यदि आप मेरी दासियां हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो, तो गोपियों के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि यदि वे विलंब करती हैं तो इस बीच अन्य कोई आ सकता है जो उनके लिए असह्य होगा। गोपियां कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था और वे उनके सानिध्य में रहने के लिए उतावली हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का भी विचार नहीं किया। अर्थात गोपियां वो कृष्ण से और अधिक उनका आकर्षण बढ़ते जा रहा था, तो वह चाहे ठंडे जल में थी लेकिन जाने का उनको निकलने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कृष्ण का संग प्राप्त कर रही थी। वे इस निष्कर्ष पर निकली पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा न था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त हो ली कि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गई। श्लोक संख्या 18। भगवान आहता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विवल हैं, तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेहपूर्वक बोले। शिला प्रभुपाद की टीका है, कृष्णा बुक में से ये टीका लिखी गई है। गोपियों की सादी भेंट इतनी शुद्ध थी कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, वे प्रसन्न हो गईं। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियों जैसी राजसी युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर था, फिर भी उन्होंने कृष्ण की इच्छा हेतु सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। वे अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। श्लोक संख्या 19। यूयम विविस्त्रा यदपोधृता व्रता व्यगाहत एतु देव हेलनम बद्धवांजलि मूर्धन्य अनुतर्ये अहंसः कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृहताम। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए निर्वस्त्र होकर स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने अधोवस्त्र वापस ले सकती हो। तात्पर्य, कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। दूसरे शब्दों में, गोपियां अपने शरीरों को अब ढक नहीं सकती थी। हमें मूर्खों की तरह यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परब्रह्म हैं और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है, और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। जो परब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है, उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। तो आज का श्लोक है श्लोक संख्या 20, आप पीछे दोहरा सकते हैं। इत्यच्युतेनाभिहितं व्रजाबला मत्वा विविस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिम् तत्पूर्ति कामास्तदशेष कर्मणाम् साक्षात् कृतं नेमुरवद्य मृग्यतः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। तात्पर्य ध्यान पर सुनिए, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां पर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया कि वे अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारिवारिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम रसद चरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण के दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का अनुकरण करना है। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों का अनुकरण करता है और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहता है। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। 500 वर्ष पूर्व कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए स्त्री संसर्ग से निश्चित रूप से दूर रहते थे। जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थी जो हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर न तो ईर्ष्या करें न चकित हों। ऐसा हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हमारे शरीर काम आसक्त हो जाएंगे, किंतु कृष्ण परब्रह्म हैं, इसलिए वे किसी भौतिक इच्छा से तनिक विचलित नहीं होते। इस तरह यह घटना जिसमें गोपियां सारी नैतिकता के मानदंड को ताक पर रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। धार्मिक नियमों की यह कोई त्रुटि नहीं है। वस्तुतः गोपियों का समर्पण सर्वधर्म की सिद्धि है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में लिखते हैं, गोपियां सीधी साधी जीव थी और कृष्ण जो कुछ भी कहते उसे वे सच मानती थी। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने तथा अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंततः गत्वा अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने उनके आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकी। गोपियों की कृष्ण भावना अतुलनीय है। वास्तव में गोपियों को न तो प्रवरुण की न ही किसी अन्य देवता की परवाह थी, वे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का प्रातःकालीन श्री भागवत कक्षा में स्वागत है। और ये अभी जैसा सब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी परसों है और उसके उपलक्ष्य में ये दशम स्कंद का हर साल हम अध्याय का पाठ करते हैं, तो उसी में से ये अध्याय 22 कृष्ण द्वारा अविभाज्य गोपियों का चीर हरण श्लोक संख्या 20 पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि हमें जो है कृष्ण भक्ति का पालन करना चाहिए गोपियों के पद चिन्हों पर चल करके। रम्या क्वाचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। लेकिन गोपियों की भक्ति है क्या वास्तविकता में देखा जाए? और इस तात्पर्य के अंदर सबसे पहले यही बताया प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, बिल्कुल प्रभुपाद जी की शैली के अनुसार ही ये तात्पर्य लिखा है, उन्होंने भी जो कॉमेंट्री लिखा है कि ये जो प्रसंग है इसमें गोपियों का जो पूर्ण शरणागति है इसका वर्णन हुआ है, इसे करके कि फुल सरेंडर किसे बोलते हैं वास्तविकता में, आत्मसमर्पण क्या होता है उसे बताया गया है यहाँ पे। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है लोगों को लगेगा कि कृष्ण कोई कामुक व्यक्ति हैं जो कि तरुणियों के साथ भोग करना चाहते हैं, और यही वार्निंग दे रहे हैं कि एक्चुअली वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और कृष्ण के लिए ऐसे कार्य जब हम लीलाएं सुने तो ना हमें ईर्ष्या करनी चाहिए और ना चकित होना चाहिए, ओ भगवान ने ऐसे कार्य कर रहे हैं, भागवत में ऐसा क्यों मेंशन किया गया है कि नहीं। लेकिन यदि हम इसकी सोचे, इसके बारे में खबर सोच इमेजिन भी करें तो निश्चित रूप से हम जो है काम वास्तव से प्रभावित हो जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन भागवतम के जब रासलीला के अंत में सुखदेव गोस्वामी भी ये बोलेंगे श्लोक विक्रीडितम व्रजवधु वर्गे इस प्रकार से कि जो भी भगवान के इन रासलीलाओं का वर्णन करता है, सुनता है, पढ़ता है, उसको क्या आशीर्वाद दिया गया है कि उसके हृदय से जो है जितना काम वासना है सब दूर हो जाएगी। तो ये यही एक कारण है कि जब प्रभुपाद जी, मुझे याद नहीं कौन से ईयर में, अर्ली 1970s के अंदर, प्रभुपाद को एक समय लॉस एंजलिस के अंदर प्रभुपाद जी ने जो है उनको बहुत अच्छा फैसिलिटी भक्तों ने तैयार किया था वहां ट्रांसलेशन के लिए। तो प्रभुपाद सुबह और शाम दोनों समय ट्रांसलेशन किया करते थे, और उस समय प्रभुपाद चौथे स्कंद के ऊपर ट्रांसलेशन कर रहे थे, या थर्ड कैंटो या फोर्थ कैंटो, इसमें से किसी फोर्थ कैंटो में ट्रांसलेशन कर रहे थे। और प्रभुपाद को लग रहा था कि शायद मैं भागदम पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रभुपाद सोच रहे थे। और प्रभुपाद ने पहले तो प्रभुपाद केवल जनरली रात को ही ट्रांसलेशन किया करते थे, और अब प्रभुपाद डबल शिफ्ट के अंदर ट्रांसलेशन करते थे, आफ्टर मॉर्निंग में भी और रात में भी ऐसे करके। क्योंकि उन दोनों फिर उतना, तब भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी को उतना मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता था इस्कॉन का लेकर के। और प्रभुपाद चाहते भी यही थे कि मैं आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भागवतम लिख सकूं। और तब प्रभुपाद ने जो है दो पुस्तकें, भागवतम तो कर रहे थे, भागवतम को रोक करके दो पुस्तकों का ट्रांसलेशन बहुत फास्ट करना शुरू किया। वो दो पुस्तकें कौन कौन सी थी? एक कृष्णा बुक और दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु। ये दो पुस्तक प्रभुपाद ने, और बहुत जल्दी प्रभुपाद ने जो है इनका ट्रांसलेशन किया, जो है मुख्यतः लॉस एंजलिस में रहकर कैसे कंटिन्यूस प्रभुपाद ने दोनों ट्रांसलेशन किया। और प्रभुपाद जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि सीधा लोगों को दशम स्कंद प्रस्तुत करना, क्योंकि भागवतम के 9 स्कंद जब हम पढ़ेंगे पहले तो आशा की जाती है कि एक व्यक्ति को भगवत तत्व के बारे में जानकारी हो जाएगी, और वो भगवान कृष्ण की जो आश्रय तत्व ऐसी लीलाओं को पढ़ करके भ्रमित ना हो। लेकिन सीधा ही कोई ऐसी लीलाओं को पढ़ेगा तो चांसेस है कि भ्रमित हो जाए। और वो कृष्णा बुक प्रभुपाद ने जो है सड़क पे, एयरपोर्ट पे, रेड लाइट पे बटवाई ऐसे करके। सो श्रील प्रभुपाद ने जो है नीड को जानते हुए कि लोगों की आवश्यकता है, दशम स्कंद को कृष्णा बुक के अंदर जो है समराइज करके हमें प्रस्तुत किया। इस प्रकार से इतना मतलब एप्रोप्रिएट सिद्धांत भी डाला उसके अंदर ताकि हम भ्रमित ना हो ऐसे करके। तो ये प्रभुपाद जी का विशेष योगदान है कि हम इसके बारे में चर्चा भी कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में यदि जान भी पा रहे हैं। तो इस श्लोक में ही बताया गया है कि कृष्ण जो है परम सत्य है, और उनके अंदर कोई भी इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं है भोग विलास की। उनका एकमात्र मकसद यह है कि अपने भक्तों के प्रेम के साथ जो है आदान प्रदान करना। और गोपियां जो हैं एक महीने से ये व्रत कर रही हैं केवल इसलिए कि वो कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकें, और कृष्ण उनकी उसी इच्छाओं को जो है पूरा करने के लिए ये लीला का वो जो है लीला कर रहे हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने, उसी प्रकार से उसमें हमें कोई संदेह नहीं होता, उसमें कोई भ्रमित आश्चर्य नहीं होता। वैसे ही कृष्ण गोपियों की जैसी इच्छा है वैसे उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। अब विशेषकर भारत में देखेंगे तो कई बारी, बहुत बारी हमारे मंदिर में बहुत लोग आते हैं, जगह जगह लोग ये बोलते हैं हमारा तो ठाकुर जी सीधा संबंध है, हम भगवान सीधा प्रेम करते हैं, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ भगवान से प्रेम तो हमारे अंदर अंदर ही बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। ये वास्तविकता में सत्य भी है और कुछ हद तक गलत भी है। सत्य कैसे है? क्योंकि जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि जो जीवात्मा है वो तो कृष्ण के नित्य दास हैं, और निश्चित रूप से जो है उनका भगवान से शाश्वत संबंध है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, है कि नहीं? लेकिन लोग कहते हैं कि इसलिए हमें भक्ति के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उनका सहजियाइज्म है, ये उनका जो है सहजिया प्रवृत्ति है कि बस हमारा भगवान से सीधा संबंध है और कुछ नहीं बस। और तभी जन्माष्टमी में भी देखिएगा कई बारी लोग आएंगे और उनका भीड़ से हटाया जाएगा तो बड़ा गुस्सा हो जाएंगे, हमें क्यों हटा रहे हो, हमारा भगवान से सीधा संबंध है, जानते नहीं हो आप, है कि नहीं? इस प्रकार से लोग जो है उनके अंदर सहजिया वृत्ति होती है कि हर चीज को बहुत सस्ता लेने की। लेकिन ये जो प्रेम है ये शब्द इतना सस्ता नहीं है, इतना लोग बना देते हैं। या आजकल भी लोग जो हैं इसको और भी चीप करके युवक युवतियों को या युवती युवक को बोलेंगे आई लव यू, है कि नहीं? वास्तविकता में भौतिक दुनिया में कोई प्रेम है नहीं, केवल काम वासना है, उस लस्ट को जो है जो लोहे के समान है उसको लव का नाम दे देते हैं केवल। लेकिन यह बात सच है कि हर जीव आत्मा जो है वो कृष्ण से प्रेम की तलाश के अंदर है। हम लोग सब जो इस दुनिया के अंदर ढूंढ रहे हैं वो ये है कृष्ण किस प्रकार कृष्ण से उस प्रेम को पुनः विकसित किया जाए, ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल सही है। और जब प्रेम की बात आती है तो एकमात्र भगवान कृष्ण के साथ ही हम कर सकते हैं, केवल भगवान के साथ, क्योंकि बाकी सबके साथ वो प्रेम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत क्षणिक है कि नहीं। किसी परिवार में संबंध कितने साल तक होता है, पिता पुत्र का या माता और पुत्र का संबंध कितने साल तक होता है, 40-50 साल तक। पति पत्नी का संबंध कितने साल तक होगा, 30-40-50 साल तक बस। लेकिन कृष्ण जो हमारा संबंध है बिल्कुल शाश्वत है। तो वास्तविक प्रेम है वो केवल कृष्ण के साथ ही हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि हम सब ये भौतिक जो है आवरणों से, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के मन बुद्धि अहंकार के आवरण से जो हम जो आवृत हैं, इस कारण से हम भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन कब तक प्रेम करते हैं, जब तक भगवान हमारी शारीरिक मानसिक इच्छाओं को पूरा करते रहे। लोग जाते भी हैं मंदिर के अंदर क्यों, भगवान इच्छा पूरी कर देना ऐसे करके, है कि नहीं, कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, भगवान अच्छी जॉब मिल जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं रूप ये क्या धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही यशम देही पुत्रम देही फ्लैट देही जॉब देही ये देही वो देही, अनेकों प्रकार की ये चाहिए लोगों को, इसीलिए भगवान के पास जाते हैं, है कि नहीं। तो कई बार लोग भगवान के पास इसलिए जाते हैं, और आपने कभी हिंदी मूवीज में देखा होगा बहुत बारी, बोले वो घंटा हीरो जाके या हीरोइन जाके घंटा हो जाते हैं और बोलते हैं यदि तू भगवान ये पत्थर की मूर्त नहीं भगवान है तो मेरी इच्छा पूरी कर दे, है कि नहीं, और तभी देखें कुछ चमत्कार हो जाएगा। अगर भगवान ऐसे होते तो बहुत ही मतलब सस्ता दिखाते हैं भगवान को, है कि नहीं। इतना गलत जो है भगवान की कि भगवान आपके ऑटो सप्लायर हैं, भगवान जो है डर गए आपकी चुनौती से कि मेरे अस्तित्व को नकार देगा ये व्यक्ति, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ही मतलब ये वास्तव में मजाक है एक भगवान के साथ में अगर देखा जाए तो लेकिन ये जो भगवान के साथ प्रेम है या भगवान की शरणागति है ये किसी भी लेवल से तनिक भी मजाक नहीं है इसके अंदर। और गोपियों के चरित्र के अंदर हम देखें यदि तो गोपियां ना ऐसे कोई दिन में बैठे ख्याली पुलाव नहीं बना रही, हाँ हम भगवान से जो है प्रेम करती हैं, भगवान से शादी करेंगे, भगवान के पति रूप में आए, ऐसा नहीं है कि बस बैठी हुई सब आपस में डे ड्रीमिंग कर रही हैं जो है, और सब गोपियां आपस बैठ के खाली प्रजल्पा कर रही हैं कि बस एक दिन ऐसा आएगा है ना, भगवान आएंगे और हमें लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। गोपियों के अंदर इंटेंस डिजायर तो है कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की, लेकिन इस शरणागति को प्रेम को बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन के अंदर वो निभा रही हैं, है कि नहीं। कई बार लोग ऐसे बस आएंगे, हाँ हम तो भावावेश के अंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं। लोग भक्ति के नाम पे अलग अलग प्रकार के जो है एक प्रकार कहते हैं ड्रामा करते हैं या नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, और अपने हृदय में सोचते हैं कि हमें भगवान से प्रेम विकसित हो गया है। और कई बार हमने सीने जोड़ से मुख से सुना है, मंदिर में आते हैं तो आंसू बहाते हैं वो बहुत जोर जोर से, है कि नहीं, और बाद में सिनेमा हॉल में जाते हैं वहां भी आंसू बहाते हैं, है कि नहीं। जब भागवत कथा में आएंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे तो भी आंसू बहाएंगे, और जब सिनेमा हॉल में देखेंगे कि हीरो हीरोइन ने आपस में बिछड़ गए तब भी आंसू बहाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे सस्ते आंसू से भगवान नहीं मिलने वाले। लेकिन गोपियों के चरित्र में यदि हम देखें तो गोपियां भगवान से एक अनुकूल संबंध चाहती थी, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके हृदय में तीव्र इच्छा थी और उन्होंने जो है एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप उठाया, वो था इस तपस्या का पालन करने का। एक महीने तक सोचिए 6-7 साल की जो कन्याएं हैं, एक महीने तक केवल हविष्य खा करके जो बिल्कुल, और ठंडे पानी के अंदर रोज सुबह स्नान करके, तो ये तपस्या उन्होंने उठाई कि भगवान को प्राप्त करना है। दे वर सीरियस, है कि नहीं, वो फोकस थी कि हाँ हमें भगवान को प्राप्त करना है तो आगे क्या किया जाए। तो भगवान ऐसे नहीं प्राप्त होते, तो ठीक है तपस्या करते हैं। तपस्या करी, चाहे वो कात्यायनी देवी की तपस्या जरूर की हो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको मालूम है एकाकी आमार नहीं पाए वाला, फिर अकेले हमारे से ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, सब गोपियां एकत्रित हुई कि हाँ साथ में रहकर हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।
तो जो लोग लाइक माइंडेड हैं उनका संग करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हम सोचते हैं मैं अकेले प्राप्त कर लूंगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा माया का प्रभाव है कि नहीं नहीं बस मेरा भगवान संबंध है, अकेले भगवान का भजन करूंगा, तपस्या उठाऊंगा. ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं अकेले रहकर तपस्या कर सकता हूं. ये केवल संभव भक्ति करना केवल भक्तों के संग में ही संभव है. तो उन गोपियों का ये सबका एक ही लक्ष्य था, कृष्ण को प्राप्त करना. एक ही उनका प्रोसेस था जो है, रोज सुबह प्रातःकाल एकत्रित होना, कृष्ण का गुणगान करना, स्नान करना इत्यादि, सबका एक ही लक्ष्य था, एक ही प्रोसेस था उनका, एक ही तरीका था. और उन गोपियों ने जो है अपने आसपास एक अनुकूल वातावरण स्थापित किया जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी. डिस्ट्रैक्शन मतलब बाधाएं नहीं थी, व्यवधान नहीं थे. तो भक्ति करने के लिए एक साधक भक्त के लिए बहुत विशेष शिक्षा है कि हालांकि गोपियां तो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी साधना, जैसे एक साधक भक्त को पालन करना चाहिए वैसे ही साधना भक्ति का पालन कर रही हैं एक प्रकार से देखा जाए तो. तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि जो सरेंडर है ये कोई, कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी बस मेरे को समर्पण करना है. कभी कभी क्लास सुन लेते हैं शरणागति के ऊपर तो उत्साहित हो जाते हैं और बोलते हैं प्रभु जी बस आज आखिरी दिन है माया का और हमें सरेंडर करना है. तो अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से मैं कुछ सीक्वेंस सोच पाया एक सरेंडर का, एक साधक भक्त के लिए जो हम अपने जीवन में कुछ हद तक अनुकूल कर सकते हैं. तो सरेंडर के लिए, समर्पण के लिए सबसे पहला जो चीज है या यू कैन से ऑब्जेक्ट है वो है गोल. किसको समर्पण करना है, क्यों समर्पण करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. आखिर किस व्यक्ति को हमने शरणागत होना है. सबसे पहले यदि गोल क्लियर होगा तो ठीक है, हाँ ये मेरा मालिक है. नहीं तो भौतिक दुनिया में तो देखिए शरणागति होती नहीं है, केवल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तभी लोग बाहर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है कि नहीं, तीन साल के लिए, चार साल के लिए, पांच साल के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, छह महीने के लिए. आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स और हर प्रकार के जो वर्कर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, इवन गवर्नमेंट उनको हायर करती है. तो उसको शरणागति नहीं बोल सकते, समर्पण नहीं बोल सकते, उसे केवल व्यवसाय बोलेंगे, है कि नहीं. और लोगों को जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां वो चेंज कर सकते हैं, तो ये शरणागति नहीं है. शरणागति के लिए एक मास्टर होना बहुत आवश्यक है, किसको शरणागत होना है. और एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें भगवान को या किसी भी व्यक्ति को शरणागत होना है, उसके बाद हमें चाहिए फोकस. क्योंकि मन का तो लक्षण है बार बार ही, मन का कार्य ही है हमें जो है बार बार ही विचलित करना ऐसे करके. तो हमें दृढ़ता पूर्वक जो है उसके ऊपर फोकस चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके कि नहीं, कंटिन्यूअस फोकस इज रिक्वायर्ड. ऐसी शरणागति के अंदर भी, और हमने आई थिंक हिजोन राधानाथ महाराज से, पता नहीं किन से सुना था ऐसे करके, कि कोई सन्यासी बता रहे थे कि सरेंडर टू कृष्णा इज नॉट अ मोमेंटरीली प्रोसेस. कि एक क्षण के अंदर हमने भगवान को समर्पण कर दिया, रादर सरेंडर टू कृष्णा इज अ मूवमेंट टू मूवमेंट प्रोसेस. कृष्ण की शरणागति हर क्षण पे है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार शरणागति कर दिया छुट्टी हो गई अब. रादर हर क्षण जीवात्मा के पास जो स्वेच्छा है, जो उसके पास फ्री विल है, उसको भगवान को समर्पण करना. अच्छा तीसरा है फोकस के बाद. अभी आप फोकस भी कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एफर्ट्स करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बस एक दिन आसमान में बिजली कड़केगी और तारे गर, ये क्या बोलते हैं, बादल गर जाएंगे और भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, स्फुरित हो जाएगा. कबे हबे बोलो से दिन आमार, है कि नहीं. तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे और वो आसान नहीं है. वो प्रयास करना, रोज सुबह मंगल आरती उठना, स्नान करना जाड़े के मौसम में भी, और ध्यानपूर्वक कम से कम 16 माला का जप करना, प्रतिदिन सेवा करना भगवान का जो है, और भगवान से प्रार्थना करना, शास्त्र पढ़ना इत्यादि, भक्तों की सेवा करना, गुरुजन की आज्ञा का पालन करना, ये हमारा दैनिक क्या हर क्षण का कार्य होना चाहिए इस प्रकार से. तो वो एफर्ट्स हमें भक्ति के मार्ग में सही दिशा में सही मात्रा में जरूर करने पड़ेंगे. और फिर चौथा प्रोसेस क्या है, अनुकूल वातावरण. कि हमें अपने आप को उस प्रकार के वातावरण में भी डालना पड़ेगा, ऐसे वातावरण में हम हों कि एक हफ्ता में एक बारी हम जो है भक्तों का संग करें, क्लास सुने, और छह दिन जो है हम टेलीविजन का को समर्पण करें. तो ऐसे वातावरण में रहकर तो हम जो है भगवान के प्रति शरणागति जरूर होंगे, लेकिन 1/7 14% तक, 85% तो टीवी के शरणागति होंगे, है कि नहीं? तो अपने आप को उस वातावरण में हमें रखना पड़ेगा जहां पे हम जो भगवान की शरणागति के अनुकूल हो। यदि हम ऐसे लोगों का संग करेंगे, ऐसे वातावरण का संग करेंगे, ऐसे किताबों का, ऐसे चीजों का संग करेंगे जो कि भगवान के प्रति समर्पण के प्रतिकूल हैं, तो फिर हमारा समर्पण थोड़ी भगवान के प्रति होने वाला है कि नहीं? और कभी कभी भक्त लोग जो है, भक्त लोग कह सकते हैं या हम सबसे गलती होती है, क्रिकेट मैच देखते हुए कई भक्त जप करते हैं, है कि नहीं? तो समर्पण भगवान के प्रति नहीं होने वाला, क्रिकेटर्स के प्रति होने वाला है कि नहीं? और उनका श्रवण फिर क्रिकेट के कमेंट्री के ऊपर होता है, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर नहीं होता, है कि नहीं? तो अगले जन्म में मतलब भगवान को जिस प्रकार से उनको योनि जरूर देंगे, तो हमें जो है इसमें बहुत वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि किस प्रकार के वातावरण में हम संग कर रहे हैं, कैसा अन्न हम खा रहे हैं, कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, कैसे विचार हम रख रहे हैं, कैसे शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं। ये सब चीजों का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण चीज है जो हमारी शरणागति को डेवलप करें। और ये भी बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अनेकों जन्म काल से जो है हम अनंत काल से इस भौतिक माया के अधीन होकर ही संग कर रहे हैं, तो कृष्ण के प्रति शरणागति होना इतना आसान नहीं रह पाता। बार बार हम देखेंगे कि हम फिसल जाते हैं कई बारी। तो इसीलिए हमें कंटिन्यूड स्टडी एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है स्टार्टिंग में और समय के साथ भी बहुत संघर्ष हो, हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि अनेकों अनर्थ जो है बार बार हमें परेशान करें, बार बार सताएं, बट यू नीड कंटिन्यूस स्टडी एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि यदि हमें जो है हमें हमारी काम वासना में वापस सताए या फिर हमारे पुराने अनर्थ वापस निकल के आए, तो प्रभु जी भक्ति का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। कई बार ऐसे लोग कहते हैं, प्रभु जी क्या फायदा हुआ, है कि नहीं? और रिजल्ट गोपाल कृष्ण महाराज भी प्रवचन बता रहे थे कि हम सुन रहे थे, तो महाराज कहते हैं उसके अंदर कि डिवोटीज कंप्लेन मेनी टाइम्स दैट आई एम चैंटिंग फॉर सो मेनी इयर्स बट स्टिल देयर इज नो चेंज इन माय हार्ट, आई एम स्टिल द सेम पर्सन। ऐसे करके कि जो मेरे को पहले अनर्थ सताते थे वो अभी भी सताते हैं। तो महाराज ने इसका उत्तर एक ही दिया, कह रहे हैं इसका मतलब हम जो है दवाई और परहेज ठीक प्रकार से नहीं कर रहे होंगे। बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तभी तो न कृष्ण मदे पावे प्रेम धन, कि निश्चित रूप से हमारे भक्ति के कार्य के अंदर कुछ जो है अपराध हमसे हो रहे होंगे शायद इसीलिए, लेकिन फिर भी भक्ति क्रिया तो अपना कार्य कर ही रही है। तो कंटिन्यूस स्टडी एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, चाहे हमारा मन हमें विचलित करे, चाहे हमारी भौतिक इच्छाएं हमें विचलित करे, लेकिन फिर भी जो है हमें भक्ति के जो साधना भक्ति के नियम है उसका पूर्ण रूप में पालन करना चाहिए। और जब हम ऐसा पालन करेंगे तो बहुत सारे टेस्ट आएंगे हमारे पास, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, हमारे संबंधी, हमारे परिवारजन, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारे एम्बिशंस इत्यादि 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 बहुत सारी बाधाएं निश्चित रूप से आएंगी ही आएंगी, और हमें इन सब का जो है ऊपर उठना होगा इस प्रकार से ऐसे करके। और ये बाधाएं तो हम हर भक्त जीवन में देखते ही हैं कि उसका टेस्ट होगा ही होगा। और वो टेस्ट जिस प्रकार संस्कृत में श्लोक आता था कि सोने का चार प्रकार से टेस्ट होता है, पीट करके, आग में तपा करके, और दो और प्रकार के टेस्ट होते हैं, तब वो असली सोना निखर करके आता है। तो वैसे ही एक भक्त के लिए भगवान बहुत सारी बाधाएं उसके जीवन में डालते हैं ताकि उसकी भक्ति जो है और ठोस होती जाए और जो है स्ट्रांग होती जाए। और फाइनली जो है टेस्ट ऑफ सरेंडर, अगर भक्त फिर भी प्रयास करते रहता है, कंटिन्यूअस गुरु के आज्ञा का पालन करते रहता है, तो फिर कृष्ण रेस्क्यूप्रोकेट करते हैं उसके साथ निश्चित रूप से। लेकिन कृष्ण का रेसिप्रोकेशन कृष्ण की इच्छा के अनुसार होता है, उस भक्त की इच्छा के अनुसार नहीं, अपेक्षा अनुसार नहीं। जिस प्रकार से यहां पे गोपियों ने शायद ऐसा भगवान से रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भगवान आएंगे तो उनके जो है वस्त्र चुरा लेंगे और इस प्रकार से उनका आदान प्रदान करेंगे, ऐसा शायद गोपियों ने भी जो है रेसिप्रोकेशन सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा। उन्होंने सोचा होगा जैसे भी धीरे धीरे करके इच्छा पूरी होगी, लेकिन कृष्ण सबके हृदय के अंदर हैं। तो कृष्ण ने कैसे रेसिप्रोकेट किया, इट वॉज बियॉन्ड गोपीज इमेजिनेशन ऑल्सो। और एक्सटर्नली गोपियों के लिए बहुत ही लज्जास्पद एम्बेरसिंग सिचुएशन थी, लेकिन यहां अनुवाद के अंदर भी आता है कि इंटरनली गोपियां बहुत ही ब्लिसफुल थी। और हालांकि कृष्ण ने उनको बिल्कुल ही एकदम कठपुतलियों की तरह जो है लिखा डॉल्स की तरह बना करके उनका पूरा जो है एक प्रकार से देखा जाए तो मजाक बना दिया था एक प्रकार से, लेकिन गोपियों ने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करी उनसे। राधर गोपियां बहुत ही प्रसन्न थी हृदय के अंदर अपने हृदय, और कृष्ण के प्रति उनका अनुराग बढ़ते ही जा रहा था इस प्रकार से। और बाद में वो खड़ी रही वहां पे, जब उन्होंने वस्त्र भी डाल लिए तो वहीं पर खड़ी रही और वहां से जा ही नहीं पा रही थी वो इस प्रकार से। तो उन्होंने कृष्ण से बिल्कुल ब्लेम नहीं किया, उनके मन में कृष्ण में क्रोध नहीं था, राधा और कृष्ण में उनका आनंद बढ़ते ही जा रहा था। वैसे ही कोई भी साधक भक्त है, कृष्ण उसका जब रेसिप्रोकेट करते हैं तो उसका सिंपल टेस्ट है उसके गुरु की आज्ञा के अंदर और श्रद्धा बढ़ती बढ़ती है निश्चित रूप से, क्योंकि तब वो देख पाता है कि गुरु की आज्ञा पालन करके कैसे उसका हृदय का शुद्धिकरण हो पा रहा है। प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम इस प्रकार से। तो जब भी हम शरणागति की ओर प्रयास करते हैं सबसे पहली बात ये कोई डे ड्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। और अब हमें लगता है कि गोपियों का शरणागत तो बहुत ही बड़ा है, हमें समझ भी नहीं आने वाला प्रभु जी और इस प्रकार से क्या करें, लेकिन उस शरणागति को हमने जीवन में कैसे आइडिया दे सकते हैं वह शीला प्रभुपाद जी के जीवन के अंदर। जितनी भी कठिनाइयां सहन करनी हो सबसे पहले प्रभुपाद कभी नहीं बोलते थे मेरा कृष्ण से सीधा संबंध है। प्रभुपाद जी जब 1922 के अंदर भक्ति सरस्वती ठाकुर से मिले तभी लिखते हैं इन माई हार्ट आई एक्सेप्टेड हिम एज माई स्पिरिचुअल मास्टर, आई न्यू ही इज गोइंग टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। तभी उनकी दीक्षा उनके हृदय के अंदर हो गई कि हाँ ये मेरे गुरु हैं। और तब से लेके अपने जीवन के अंत काल तक श्रील प्रभुपाद जो हैं अपने गुरु श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर को जो है पूर्णतया समर्पित थे। और प्रभुपाद जी ने जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शब्दों को इतना ध्यान पूर्वक सुनते थे। प्रभा लिख रहे हैं जब शेषशाही के दर्शन करने कोसी के अंदर सब भक्त चले गए तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने घंटों घंटों तक प्रवचन दिया संबंध अभिधेय प्रवचन के ऊपर कई घंटों तक। और प्रभुपाद बिल्कुल रैप्ड अटेंशन जो है प्रभा उसमें लिख रहे हैं लीलामृतम सत्तु महाराज कि मैं जो हूं भक्ति सिद्धांत ठाकुर के वचनों का अमृत का जो है पान करता रहा इस प्रकार से, मैं पी रहा था विद रैप्ड अटेंशन। और आई वॉज नॉट द सेम पर्सन आफ्टर दिस, आई फेल्ट एज इफ समबडी इज एक्सपोजिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर मी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई आध्यात्मिक जीवन मेरे सामने लाके आध्यात्मिक जगत मेरे सामने लाके मुझे दिखा रहा है। तो ये होता है असली श्रवण का जो है परिणाम। और उसके कुछ ही हफ्तों बाद प्रैक्टिकली शिला भक्ति ठाकुर जो है इलाहाबाद आए और वहां पर उन्होंने भक्ति शिला अभयचरण दे को दीक्षा दी और नाम क्या दिया उन्हें अभयचरण दास। और प्रभुपाद जी 1935 के व्यास पूजा ऑफरिंग के अंदर एक बहुत ही सुंदर जो है बॉम्बे के अंदर ये व्यास पूजा उत्सव हुआ था, बहुत सुंदर स्पीच देते हैं प्रवचन देते हैं वहां पे सब उपस्थित अतिथियों को और भक्तियों को, और एक बहुत ही सुंदर जो है पोयम कंपोज करते हैं वो, बहुत ही सुंदर पोयम है, हमने उसके कुछ प्रिंट आउट निकाले हुए हैं जिन भक्तों को चाहिए तो ले सकते हैं वो। और तो जितने उनके गुरु भाई थे जो सन्यासीगण भी उपस्थित थे जब उन्होंने सुना श्रील प्रभुपाद जी को इस प्रकार से इंग्लिश भाषा के अंदर इतना सटीक सिद्धांत तो सब समझ गए कि इज एन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रीचर, ही विल बिकम इन फ्यूचर लाइक दैट। और प्रभुपाद बिकम वेरी फेमस और जब पोयम लिखी तो उनके गुरु भाई जो हैं उनको कवि के रूप में कहने लगे जो हैं कि आप बहुत ही एक्सपर्ट कवि हो। और उसके बाद ये पोयम और पूरा स्पीच जो उनके मैगजीन है हारमोनियस के अंदर पब्लिश हुई और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पढ़ा उसे। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पढ़ा तो बहुत ही हृदय से खुश हुए वो ये सिद्धांत पढ़ करके। और विशेषकर उसमें से एक स्टैंजा था जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत जब भी जाते थे जहां भी जाते थे अपने सब शिष्यों को दिखाते थे श्री वॉट अभय चरण हैज रिटन ऐसे करके, और वो था एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज मूव्ड, अर्थात भगवान एक पुरुष है जो है भक्ति ठाकुर ने प्रूव कर दिया है और जो एक कैलामिटी है, कैलामिटी अर्थात आपदा है विपदा है, किसकी विपदा है वो इम्पर्सनलिज्म निर्विशेषवाद जो है इसको क्या कहते दाउ हैस्ट रिमूव्ड कि भक्ति ठाकुर ने जो इसको दूर हटा दिया है। और भक्ति ठाकुर इतने खुश हुए कि हाँ इसने मेरा असली ये शिष्य ने मेरा असली मिशन जो है जान लिया है। और जब भक्तों ने ऐसा सुना उनके गुरु भाइयों ने तो वो तुलना करते थे जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किसको जो है रूप गोस्वामी के बारे में श्री चैतन्य मनोभीष्टम, तो सब कहते थे कि अभय चरण दास ने क्या किया है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के मनोभीष्ट को जान लिया है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रभुपाद जी का जीवन और लीलामृत में चैप्टर आता है लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, ऐसे करके कि प्रभुपाद जी जो है जीवन के अंत तक कितना अधिक संघर्ष और प्रयास करते रहे, चाहे वो अकेले थे, बीटी बैक टू गार्डन मैगजीन लिखना, उसको एडिट करना, उसको पब्लिश करना, चाहे वो अपना ब्रेकफास्ट उन्हें छोड़ करके पेपर खरीदना हो, पैदल चलना हो पैसे बचाने के लिए, थर्ड क्लास ट्रेन की बोगी में मथुरा से आना हो, वानप्रस लेना हो, संन्यास लेना हो, चाहे उनको सनस्ट्रोक आए, कितनी भी समस्याएं आए, जलदूत में जाना पड़े, दो हार्ट अटैक आए, प्रभुपाद ने कभी भी अपने गुरु के प्रति समर्पण को नहीं छोड़ा। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रिय अति कृष्ण भक्ति दय ठाए ठाए, उनको मालूम था कि ये उनके जो है जीवन में शरणागति थी वास्तविकता में। तो हम ऐसे देखते हैं कि प्रभुपाद जी में इतना अधिक संघर्ष है, इतना अधिक त्याग है, जब हमें प्रेम किसी से करना हो तो वो फिर मजाक का बात नहीं है। ऐसे करके प्रेम का मतलब ही है सैक्रिफाइस, प्रेम का मतलब ही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके इच्छा पूर्ति के लिए उसका माध्यम बनना, यही गोपियों के हृदय के अंदर यही इच्छा है। और सबने सब कथा जानते ही होंगे जब भगवान के सिर में दर्द होता है और वो कहते हैं कि मुझे मेरे भक्त की रथ चाहिए, तो सब भक्त मना कर देते हैं, लेकिन गोपियां क्या कहती हैं कि लेके जाओ, पूरा पहाड़ बना बना के बोलते भर के लेके जाओ, अगर भगवान के सिरदर्द मिटा, एक क्षण के सिरदर्द मिटाने के लिए हमें चिरकाल तक इटर्निटी के लिए नरक में जाना पड़े तो भी हम तैयार हैं। दैट इज कॉल्ड सरेंडर, जिसे पूर्ण शरणागति बोलते हैं। और हमारे जीवन में शरणागति का भाव हमें भगवान को उत्पन्न करने के लिए निश्चित रूप से उनके प्रति शरणागत होना पड़ेगा जो ऑलरेडी भगवान के शरणागत हैं, अर्थात गुरु परंपरा के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से जो है, और के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमें जो है डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और चाहे उनके मिशन के लिए जो है हमें कुछ संघर्ष भी करना पड़े, स्टिल वन शुड बी रेडी। और सरेंडर का अर्थ क्या है? एक होता है व्यक्ति को सरेंडर, किसी व्यक्ति को सरेंडर करना, लेकिन उस व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण चीज है किस मिशन को सरेंडर कर रहे हैं। कभी कभी ये जो है हमें एक बड़ा सेंटिमेंटल सा आइडिया बन जाता है हमारे दिमाग के अंदर कि हमें व्यक्ति को शरणागत होना है। निश्चित रूप से व्यक्ति को शरणागत होना है, लेकिन किसके लिए? उनका जो मिशन है उसके लिए। ऐसे करके जो भगवान का गुरु परंपरा का मिशन है उस मिशन के प्रति शरणागत होना है। ऐसा नहीं है कि एक अंधी शरणागति नहीं चाहिए, ब्लाइंड सरेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड, एब्सोल्यूट सरेंडर इज रिक्वायर्ड। ऐसे करके देयर इज अ डिफरेंट इन ब्लाइंड सरेंडर एंड एब्सोल्यूट सरेंडर। ऐसे करके तो हमारे जीवन में जो एटलीस्ट जीवन तो नहीं, लेकिन फिर भी हम भगवान की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी के त्याग को देख सकते हैं कि आज उनकी कृपा से इतने प्रचार हो रहा है, हम सब माला कर पा रहे हैं, हमारा शुद्धिकरण हो पा रहा है, हमें जन्माष्टमी उत्सव मना पा रहे हैं, भगवान की सेवा करने के लिए अनेकों तरीके श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिए, या ग्रंथ दिए, रात रात जाकर के प्रभुपाद ने ग्रंथ हमारे लिए लिखे ताकि हम जो है इसको पढ़ सकें और एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ सकें, परम सत्य को जान सकें। जो नहीं तो ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत्र पदसीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो कह रहे हैं चाहे कोई कि मन की गति से भी कोई चलता क्यों ना रहे, और कई मुनि जो हैं लेकिन फिर भी भगवान को समझ नहीं सकते, और ये भगवान की कृपा है। देखिए प्रभुपाद जी कृपा है, कृष्ण बुक प्रभुपाद ने हमको दिया और आगे भागवतम दिया कि हम भगवान की अंतरंग से अंतरंग लीलाओं के ऊपर डिस्कस कर पा रहे हैं। सोचिए, जस्ट इमेजिन व्हाट इज आवर ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून। तो देयरफॉर जो है हमें गोपियों के डांट सीखना चाहिए कि हम भी भगवान के इस मिशन के प्रति शरणागत हो सकें। और शरणागति का मतलब यही है जब हम गुरु के या उनके शिष्यों के प्रति शरणागत होंगे, उनके प्रतिनिधियों के प्रति, तो निश्चित रूप से कई सारी एम्बैरसिंग सिचुएशन हमारे लिए होंगी ही होंगी। आंतरिक रूप से बहुत सारा स्ट्रगल होगा, चाहे बहुत हमारा शायद बेइज्जती हो, इस प्रकार से कह सकते शर्मिंदगी हो जिस पर गोपियों को हुई है। ये ज्यादा अच्छा है कि हम अपने गुरु भगवान के प्रति एक्सपोज हो जाएं, राधा देन हम उनके सामने हाइड करके रखे अपने आप को और दुनिया के प्रति एक्सपोज हो। इट्स बेटर टू बी एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर एंड रिमेन सरेंडर्ड एंड फेथफुल टू देम, तब हमें उनसे प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ऐसे करके ना कि हम अपने आप को हाइड करते रहें और है भगवान से दूर होते रहें, इस प्रकार से तो भगवान भी अपने आप को हाइड करते रहेंगे। ऐसे करके है कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री हरण लीला की, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।